मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 8 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मेन सब्जेक्ट के रूप में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 35A पर। इस पर हम क्यों बात करेंगे, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यह मैं तभी आपको बताऊंगा जब हम इस पर बात करेंगे। तो आइए अब मैं रेडियो न्यूज और डीडी न्यूज पर थोड़ी सी बातें करता हूं। हालांकि मुश्किल यह है कि इन पर बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, शनिवार इतवार तो सरकार ही बंद रहती है, कुछ न्यूज में ज्यादा नहीं थी, और सोमवार के भी न्यूज में आपको बहुत चीजें सुनने को नहीं मिली होंगी, चाहे आपने दूरदर्शन की खबर सुनी हो या रेडियो की खबर क्यों ना सुनी हो, है ना, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के दृष्टि से। अदरवाइज तो दोनों मीडिया ने अपना पर्याप्त समय लिया ही है, जो उनके लिए निर्धारित समय होता है वो लेते ही हैं और लेना ही चाहिए। तो मित्रों, एक जो मुझे सिविल सर्विस की दृष्टि से जो एक इम्पॉर्टेंट खबर थोड़ी सी लग रही है वह है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर। दूरदर्शन पर तो काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी गई कि कहां कहां ये मनाया गया, और हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके भी स्टेटमेंट थे, उन्होंने जब इसका उद्घाटन किया। और सबसे अच्छी बात है कि एक खादी के चेयरमैन रहे हैं, खादी ग्रामोद्योग के शायद चेयरमैन रहे हैं, मुझे डेजिग्नेशन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। डीडी न्यूज पर उनसे फिर एक बातचीत दिखाई थी, वो काफी अच्छी थी, काफी अच्छी बातचीत थी, क्योंकि वो उसके चेयरमैन रहे हैं तो इस सेक्टर में क्या परेशानियां हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या होना चाहिए, इसकी उनको बहुत ही व्यावहारिक समझ थी। तो मुझे वो बातचीत बहुत अच्छी लगी और हो सकता है कि आप लोगों ने भी वह बातचीत सुनी हो। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देखिए पहले से मनाया जा रहा है, 3 साल हो गए हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात थोड़ी सी हो सकती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के, नो डाउट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल प्रश्न हो सकता है मुख्य परीक्षा का, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस मायने में कि जो हथकरघा उद्योग है इसमें दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि यह बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और आपको यह पहले से मालूम है कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट जो शुरू हुआ था उसमें जो स्वदेशी की जो बात गांधी जी ने उठाई थी, स्वदेशी आंदोलन, तो वो जो स्वदेश निर्मित की जो बात थी वो बेसिकली मूलतः कपड़ा उद्योग से ही जुड़ी हुई थी, मूलतः। वैसे तो दूसरे भी सेक्टर थे, हस्तकला के क्षेत्र उसमें शामिल थे, लेकिन जो मूल था वो हथकरघा उद्योग था, मतलब हमारे बुनकर थे, कपड़ा उद्योग था। और उसका कारण यह था कि जो ब्रिटेन उस समय वहां जहां एक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहां खूब कपड़ा की मीलें बन गई थी, खुल गई थी, और वो कपड़ा बना बनाया अपने यहां से वो भारत के मार्केट में भेजते थे। और चूंकि वो मील का बना हुआ कपड़ा होता था, बहुत अच्छा होता था, सस्ता भी होता था, तो लोग उसे स्वाभाविक तौर पर खरीदते थे। और उस समय तो एक इम्पोर्टेड माल का अपना एक क्रेज होता था कि यार ब्रिटेन से बना हुआ है। उसका नतीजा ये हो रहा था कि हमारे जो अपने बुनकर थे वो बेरोजगार होते जा रहे थे लगातार। तो गांधी जी इस बात को देख रहे थे कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को ये जो सिस्टम है, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है, ये नष्ट कर रही है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपको आराम से याद आ जाएगा। तो एक तो यह हिस्ट्री का पार्ट है जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक प्रश्न थोड़ा सा पूछ लिया जाए। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पर हम बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरह से एजुकेशन का फैलाव हो रहा है, और तीसरा यह कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस्ड होती जा रही है, रोबोट आ रहे हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो लॉयर्स का काम कर रहे हैं, अब कारें बनने वाली हैं जहां ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, कंप्यूटर का करिश्मा आप देख ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते ही करते हैं। तो इन सब की वजह से जो रोजगार है उसके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है कि हम अपने लोगों के इन दो हाथों को काम कैसे उपलब्ध कराएं, और ये दुनिया के सामने संकट है, भारत के ही सामने संकट नहीं है। इसीलिए देखिए कि कैसे अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जाने लगी है कि अपने नागरिकों को हम हर महीने इतना तो पैसा देंगे ही देंगे। ठीक है, हम उनको पैसा दे लेंगे, दे देंगे, लेकिन वो अपना समय कैसे काटेंगे? क्योंकि पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन वही इंपॉर्टेंट नहीं है। आदमी अगर खाली बैठेगा बिना काम के तो देखिए सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हम टीवी देखते रहेंगे, हम गप मारते रहेंगे, हम सोते रहेंगे, अपने मन का काम करेंगे, लेकिन बिना काम के समय काटना बहुत मुश्किल। उससे दूसरे किस्म के सामाजिक सांस्कृतिक संकट पैदा होंगे, लोग इस बात को जानते हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, यहां तक कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत का जो वस्त्र उद्योग है, हथकरघा उद्योग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। क्योंकि जब आप इस तरह की समस्याओं को पढ़ते हैं तब आप देखें कि उसके उपाय के रूप में क्या बताया जाता है। उपाय यही बताया जाता है कि भारत में जो लघु उद्योग हैं, जो सूक्ष्म उद्योग हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर हम इनको बढ़ावा देंगे तो लोगों को रोजगार मिल सकेगा, और फिर जो लगातार बेरोजगारी का दबाव है, जो शहरों की तरफ लगातार लोग आते चले जा रहे हैं, उन पर थोड़ा नियंत्रण लग सकेगा। तो दोस्तों ये दो एंगल हैं, एक मैंने हिस्ट्री का बताया और दूसरा इकोनॉमी का, रोजगार को लेकर के। इस दृष्टि से ये जो राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस है, हथकरघा दिवस, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस रूप में थोड़ी सी तैयारी कर लेना चाहिए कि हथकरघा उद्योग, देखिए उसको तो जिस कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है तो संकट में तो है ना, कपड़े लोग पसंद नहीं करते, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो जो मैंने चेयरमैन की बात बताई, फॉर्मर चेयरमैन है, उन्होंने दो तीन बहुत अच्छी चीजें बताई। एक तो उन्होंने कहा कि इनको जो धन, जो ऋण है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि सस्ते ऋण पर, सस्ते ब्याज पर इनको ऋण मिल सके ताकि ये सर्वाइव कर सके। दूसरी बात उन्होंने मार्केटिंग की बताई कि ये इन उत्पाद तो कर लेंगे लेकिन इनकी मार्केटिंग कैसे हो, विपणन की बहुत बड़ी समस्या इनके सामने होती है, तो सरकार मार्केट अवेलेबल कराए। तीसरा उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में रिसर्च बिल्कुल रुक गया है, देखें कि कैसे हम और ज्यादा अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, कैसे इनकी कीमत को कम किया जा सकता है, कैसे इस तरह के छोटे छोटे यंत्र बनाए जा सकते हैं जो घरेलू स्तर पर लोग खरीद सकें और उससे बुनाई कर सकें, रंगों का संयोजन कैसे हो सकता है। तो इन सब को लेकर के उन्होंने कहा कि रिसर्च पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ये तीन चार पॉइंट उन्होंने बताए थे जो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त सच पूछे तो न्यूज में मुझे कुछ खास ऐसी बात नहीं लगी जो मैं आप लोगों को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से अपने डेली ऑडियो लेक्चर में बता सकूं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आते हैं अनुच्छेद 35A पर। देखिए, जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हमसे चूक कहां होती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज 35A तो आप समझ ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सिविल प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया आपसे कि अनुच्छेद 35A क, इसको हिंदी मतलब संविधान में आप देखेंगे तो इसकी जगह क शब्द का इस्तेमाल किया, 35 क किससे संबंधित है, राइट? तो अब आप देखिए कि अनुच्छेद 335A के बारे में पूछ रहे हैं कि किससे संबंधित है, तो बहुत ही प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, बहुत ही प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है कि किससे संबंधित है। लेकिन बहुत कठिन भी है। कठिन इस मायने में है कि हमारे इतने सारे अनुच्छेद हैं, इन कितने अनुच्छेदों को हम याद रखेंगे, और उसमें भी 35 के बारे में नहीं पूछ रहे, 35A के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर यही पूछ देंगे कि और इसको कठिन बनाना होगा तो ये कब पारित किया गया, मतलब कब इसे जोड़ा गया हमारे संविधान में, या कि शुरू से ही संविधान में था, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं प्री में, है ना। मेंस में फिर इस पर अलग तरीके से प्रश्न बन सकता है। अब आप देखिए कि अगर तैयारी करने वाला स्टूडेंट बहुत सतर्क नहीं है, और मान लीजिए कि उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट लिया है ना, वो ऑप्शनल के रूप में पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक रिलेशन की तैयारी, आपके इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी कर रहा है, उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद है, यहां वो मिस कर जाएगा। मिस इसलिए कर जाएगा क्योंकि वो करेंट अफेयर्स पर उसका बहुत ध्यान नहीं है। और मजेदार बात यह है कि इससे पहले हो सकता है कि न्यूज में हो कि अगर आपने मंडे की न्यूज सुनी हो तो मंडे की न्यूज में ये न्यूज नहीं है, उससे पहले की न्यूज में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जनरली देखेंगे ना आप सैटरडे संडे की जो न्यूज होती है उसमें स्टूडेंट बहुत सतर्क नहीं होता है कि यार छुट्टी है तो उसका मूड छुट्टी का कुछ ज्यादा ही होता है, तो वो न्यूज में अगर वहां है भी तो उसको मिस कर जाता है, और ये अगर उसने सुन भी लिया तो सोचता है कि चलिए ठीक है क्या है, मतलब रोज इस तरह की बात होती रहती है। तो फ्रेंड्स, तैयारी करने वाले स्टूडेंट में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए या सतर्कता सजगता होनी चाहिए या यूं कह लीजिए कि समझ होनी चाहिए कि वो ये जान सके कि नहीं नहीं ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि इसको आप कैसे जानेंगे। देखिए कहना तो बहुत आसान है, जानना चाहिए, लेकिन कैसे जानेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो कश्मीर का मामला है आप देखिए कि कितना गरमाया हुआ मामला है। कश्मीर रोज आपको न्यूज में मिल रहा है, रोज वहां जो पाकिस्तान है वो सीमा का उल्लंघन कर रहा है, हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, भारतीय सेना भी उसका प्रत्युत्तर दे रही है और उसमें कई आतंकवादियों को उसने मार कर गिराने में सफलता हासिल की है। इसको लेकर के पाकिस्तान के साथ लगातार एक तनाव बना हुआ है, डायलॉग की स्थिति लगभग शून्य सी हो गई है। ये सब हम देख रहे हैं कि मतलब एक तनाव की स्थिति बनी हुई कश्मीर को लेकर के, राइट, कहीं पत्थर फेंके जा रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। अब वहां सरकार है, अब 35A चर्चा इसमें इस बात पे आए कि वहां जो अभी सरकार है मुफ्ती मोहम्मद, क्या कहते हैं वो, बेगम मोहम्मद वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी और बाद में फिर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बात कही कि अगर 35A को सरकार ने खत्म कर दिया तो फिर, मतलब ये बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि फिर कश्मीर में भारत का झंडा अपने कंधे पर उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, यानी कि फिर सब के सब भारत विरोधी हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, और वो भी चीफ मिनिस्टर ये बात कह रही है, फॉर्मर मिनिस्टर भी ये बात कह रही है। इसका मतलब है कि जो अनुच्छेद 35A है वो काफी सेंसिटिव होगा, तभी वो ये बात कह रहे हैं, है ना। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं उस पर हम अभी नहीं जाते, हम तो केवल ये डिसाइड फिलहाल कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बात कह दी गई, दूरदर्शन न्यूज में बकायदे इस पर दिखाया गया और लोगों ने फिर अपने अपने स्टेटमेंट दिए। तो अब आप देखिए कि जब हम कश्मीर के मामले को सुलझा रहे हैं, वो मामला बहुत संवेदनशील और लगातार जटिल होता जा रहा है, अगर उसमें अनुच्छेद 35A की बात हो रही है तो बट नेचुरली कि फिर हमें जानना चाहिए। और वैसे भी कश्मीर का जो मामला है वो आपके जनरल नॉलेज का एक बहुत ही अभिन्न अंग है कि उसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद 370 की व्यवस्था की गई है, और कश्मीर फिर शेष भारत कश्मीर की विधानसभा को जो हमारे दूसरे राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके तुलना में ज्यादा अधिकार है, अतिरिक्त किस्म के अधिकार है, और उसके पीछे कारण है। आपको थोड़े से कारण को समझ लेने चाहिए। आपको मालूम है कि जब अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा करने की बात कही तो ठीक है, एक तो उसने भारत बना दिया, एक उसने पाकिस्तान बना दिया, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे जो राजा रजवाड़े थे उनको ये अधिकार दे दिया कि आप या तो भारत में शामिल होइए या पाकिस्तान में शामिल होइए। उन पर यह दबाव नहीं डाला कि आप उस सीमा रेखा के अंदर अगर हैं तो आप उसी राज्य में रहेंगे। तो आपको मालूम है कि फिर जामनगर और हैदराबाद और कश्मीर और ये सब कुछ जो हमारे शासक थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो किसी में शामिल नहीं होंगे, हम तो इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे, है ना। तो फिर सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता से और साहस से देश का एकीकरण किया, ये आप जानते हैं, उसमें कश्मीर भी था। तब कश्मीर को कैसे भारत में शामिल किया जाए, ये कंसर्न भारत का तो था ही, क्योंकि वो बिल्कुल हमारी सीमा पर लगा हुआ है। लेकिन स्थिति यह हुई कि कश्मीर पर अचानक पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान के कुछ समूहों ने अटैक कर दिया, फिर कश्मीर के जो हिंदू राजा थे उन्होंने भारत से मदद मांगी, भारत ने मदद करके उनकी रक्षा की, और उस समय वहां के जो राजा थे उन्होंने भारत के साथ समझौता करके और उस पर साइन किए, और संविधान में फिर उनके लिए 370 अनुच्छेद की व्यवस्था की गई। तो एक अलग किस्म की उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां थी कि वहां की जनता को शांत रखने के लिए या उनकी जो डिमांड थी उनकी वजह से अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। ये आपको थोड़ा सा मालूम हो गया। अब 335A क्या है, आप देखिए जो याद रखिए कि जो 335 ए जो ये संविधान में जो जोड़ा भी गया है फ्रेंड्स, इसे जो हमारे राष्ट्रपति ने जो जारी किया है अनुच्छेद 370 के तहत किया है, क्योंकि अनुच्छेद 370 में जो कश्मीर को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है उसके तहत ये किया गया है, और ये जारी किया गया 1954 में जोड़ा गया। देखिए इसका सिंपल सा अर्थ क्या है, सिंपल सा अर्थ यह है कि जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसको ये अधिकार दिए गए, ये उसको शक्ति दी गई कहना चाहिए कि वह अपने हिसाब से स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करे। अगर आप हमारा संविधान उठाकर देखेंगे तो भारत का नागरिक कौन होगा इस पर डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करे और फिर उन्हें पहचान कर उन्हें विशेषाधिकार भी दे, वो जो चाहती है वह दे। राइट फ्रेंड्स, अब इसके डिटेल्स के रूप में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वह क्या चाहती है, मतलब अधिकार तो आपने दे दिया ठीक है, लेकिन उस अधिकार का क्या संबंध है। तो उसमें जो भाषा है, अगर आप संविधान की अब देखेंगे तो वो तो थोड़ी सी कठिन सी भाषा होती है दोस्तों, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहला तो ये है कि वो देखें कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होगा, ये वहां की विधानसभा तैयार करे, ठीक है। इसके बाद वहां जम्मू कश्मीर में कौन परमानेंट प्रॉपर्टी खरीद सकेगा वह तय करे। जैसे मैं आपको चलिए इंग्लिश में बता देता हूं तो इंग्लिश में शायद आपको बात समझ में आ जाए, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट। फिर यह है कि राज्य सरकार के अधीन कौन एम्प्लॉयमेंट हासिल करेगा, एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य में कौन बस सकेगा, सेटलमेंट इन द स्टेट। और यहां तक कि जो स्कॉलरशिप होती है या जो दूसरे किस्म की जो सहायता होती है जो राज्य सरकारें देती हैं वह किनको दी जाए, राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एड एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रोवाइड। इन सब का फैसला वहां की विधानसभा करेगी, ये उसको विशेष अधिकार दिए गए 35A के जरिए। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया कि 35A का संबंध किससे है। तो वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका यह कहना है कि आप इसे खत्म कर देंगे तो यहां की जनता में बहुत ज्यादा रोष होगा और एक तरीके से वो भारत के विरुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वहां की विधानसभा के अधिकार खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा किया गया। तो मित्रों इस तरीके से हमें थोड़ा सा सजग रहकर समझदारी के साथ तैयारी करने की जरूरत होती है, तब सही मायने में हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ की प्रिपरेशन के साथ न्याय कर पाते हैं। और जब आप ऐसी तैयारी करते हैं ना तो आप देखिए कि फिर जब यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे प्री में पूछा जाए या मेंस में पूछा जाए, तो आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा, बहुत अटपटा नहीं लगेगा कि अरे कहां से पूछ लिया गया, क्यों पूछ लिया गया, आप उनके उत्तर बड़े आराम से दे देंगे। थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और थोड़ी सी सजगता की जरूरत है। तो मित्रों मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर के द्वारा इस बारे में आपको ताकीद करता रहूं, आपको सतर्क करता रहूं और जरूरत की चीजें भी प्रोवाइड करता रहूं। तो मित्रों आज के न्यूज में बस इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको दोस्तों प्रोवाइड कर रहा हूं और उसमें एक बहुत अच्छी क्लिपिंग्स है राजीव कुमार की, जो खासकर नीति निर्माण के ऊपर है। मित्रों उसे आप जरूर पढ़िएगा, वो हिंदी में ही है, वो आपको एक व्यू देगा पॉलिसी मेकिंग के तहत कि भारत में जो नीतियां बनी, किसी भी क्षेत्र की जो नीतियां बनी वो किस तरीके से बनी, किस तरीके से बननी चाहिए। आप केवल उसको पढ़िए, देखिए वो कितनी सही है कितनी गलत है, आप किससे सहमत है कितने असहमत है, उसके बारे में आप अपने लेवल पर सोचिए। लेकिन सोचने के लिए आपको यह आर्टिकल काफी कुछ मसाला प्रोवाइड करेगा, तो आप लोग उसे जरूर पढ़ें। मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो हमारे नौजवान साथियों का स्वागत करने का चरण है। तो मैं स्वागत करता हूं अपने तीन उन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं ओम प्रकाश चौधरी, आप सतना मध्य प्रदेश से हैं, अभय राज सिंह, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, और अभिजीत सौदागर शिंदे, आप पुणे महाराष्ट्र से हैं। आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहां समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।